Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. आज के इस पालघर इस्कॉन सेंटर के श्री गौर पूर्णिमा के उत्सव में आप सबका स्वागत है। आज 8 मार्च का दिन है, श्री गौर पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, बहुत पवित्र दिन है आज, क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी दिव्य इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ अद्भुत कार्य किया है। वो क्या दिव्य इच्छा थी उनकी? श्री कृष्ण भगवान की ऐसी इच्छा थी कि कलयुग में लोगों के जीवन में ज्यादा कुछ दम नहीं है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कला वस्मिन युगे जनहा, मंद समंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। सबका आयु बहुत कम है, सबके अंदर सद्गुण बहुत कम है, सबकी स्मृति कम होती जा रही है, सबका भाग्य बहुत मंद है, दुर्भाग्य ज्यादा है, सद्भाग्य तो है ही नहीं। सब लोग मंद मति के हैं, बुद्धि ज्यादा जल्दी भागती नहीं है, बहुत मंद हो गई है बुद्धि। सबसे अधिक तकलीफ वाली बात है, सब जगह दम्भ भरा हुआ है, सब जगह जो लोग नहीं है वो है ऐसा दिखाने का प्रयास कर, है ना? सब जगह वैसा है ना, हम लोग भी ऐसे ही है, जो हम लोग नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। और क्योंकि हम लोग है वो नहीं है और नहीं वो है, इसलिए सब जगह झगड़े बने रहते हैं। कोई कारण जरूरत नहीं झगड़े करने के लिए। ट्रेन में किसी ने पांव पे पांव दिया, तुरंत झगड़ा चालू हो गया। घर में सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया तो झगड़ा चालू, पसंद की सब्जी नहीं मिली तो भी झगड़ा चालू, किसी को कोई पद नहीं मिला, किसी को कोई अधिकार नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला तो भी चालू। पता है ना गांव के अंदर शादी में क्या होता है, किसी का सम्मान नहीं किया, शराब नहीं दिया उसको, तुरंत सर फोड़ने को तैयार रहते। ऐसे बहुत पतित अवस्था को देखते हुए, सद्गुण नहीं है, कुछ अच्छे कुछ देखने जाए तो अच्छा कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसे कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे किया जाए, ये देखकर चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि अभी ऐसी कृपा की जाए जो किसी को कोई योग्यता की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बिना किसी योग्यता के उन पर कृपा की जाए, बस ये सोचकर परम भगवान परम करुणा के साथ अवतार लेने का सोचते हैं। वैसे कोई लोग जब भी नीचे नीचे उतरते हैं ना तो उनको सुविधा भी नीचे की मिल जाती है, लेकिन भगवान बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। जितना हम लोग नीचे जाते हैं उतना सबसे अधिक कृपा वो करते हैं। इसलिए ऐसे कहा गया है कि कलयुग में संत लोग सब कलयुग की पूजा करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसको गौरव करते हैं, उसको पूजते हैं, क्योंकि संत लोग जानते हैं कि कले देश दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य उक्त संग परम व्रजेत। इतने सारे दोष के सागर में एक ऐसी वस्तु है जो सारे दोषों को मिटा सकती है, एकदम न्यून कर सकती है, मतलब इट कैन मिनिमाइज ऑल द बिगेस्ट फॉल्ट, सबसे ज्यादा जो दोष है वो सब एकदम नगण्य हो जाएंगे, ऐसा एक बहुत दिव्य गुण है कलयुग के अंदर, वो है कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण भगवान के दिव्य नाम का गुणगान और संकीर्तन। ये एक ऐसा गुण है जो सब व्यक्तियों को परम गति को प्राप्त करा सकता है, और ये महाप्रभु जी की, चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि गौलोक धाम का जो सार है, हाँ गौलोक धाम तो बहुत बड़ा है, बहुत दिव्य है, उसमें अनंत चीजें ऐसी है जो हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं, इतना दिव्य और भव्य जो गौलोक वृंदावन है उसका एक सार है, वो है प्रेम, भगवान का भक्तों के प्रति और भक्तों का भगवान के प्रति। ये जो प्रेम है ये भी अनंत है और ये भी बहुत दिव्य है, कोई भौतिक लवलेश उसके अंदर नहीं है। ये जो प्रेम गोलोक धाम का सार है वो हरे कृष्ण महामंत्र के कैप्सूल में भर के आपको दिया है। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी सदृश श्रद्धा के साथ में उसको लेना है और जीवन का उद्धार करना है। अगले अगले युगों में क्या होता है, तपस्या करनी पड़ती है, नियमों का पालन करना पड़ता है, हाँ, कर्मों से मुक्त करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए बहुत सारे कर्म कांड करने पड़ते हैं, शास्त्र का अध्ययन करके थोड़ा विरक्त होना पड़ता है, फिर मुक्ति के बारे में सोचना है, फिर कहाँ जाएंगे, वैकुंठ धाम, वैकुंठ में आरोहण करेंगे, फिर कभी प्रेम भक्ति, उसके आगे की स्थिति। लेकिन कलयुग में महाप्रभु चैतन्य क्या करते हैं, सभी एक ही एक में डाल देते हैं, फ्रॉम जीरो टू हाईएस्ट इन्फिनिटी एक साथ दे देते हैं, कोई स्टेप्स नहीं बीच के अंदर उसके। जगाए मजाए का उदाहरण है इसके लिए, हाँ, कोई तपस्या नहीं किया पापों का निवारण करने के लिए, थोड़ा भक्ति निर्माण करने के लिए और थोड़े काम किया, थोड़ा साधना किया, उसके बाद बहुत साल बीते, फिर थोड़ा बहुत प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे भक्ति मिली, फिर गुरु मिले, ऐसा कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट एक बार गले लगाया तो एक ही क्षण के साथ में अनंत सागरों में जितने भी पाप नहीं हो सकते उतने पापों का शालन जो है एक क्षण में हुआ, उसी क्षण में आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे। ऐसा कोई चमत्कार है ना किसी भी अवतार में, तारा साक्षी जगाई बधाई, हाँ, दीना हीना याता चिलो हरिनामा उद्धारी लो। दीन हीन, सबसे जो दीन, सबसे पतित, सबसे बड़े पापी, हाँ, ऐसे लोगों को केवल हरिनाम के माध्यम से उन्होंने उद्धार किया। आज उनका जन्मदिन है, आज उन्होंने ये कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया, इसलिए आज का दिन बहुत दयालु दिन है। जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो प्रेम और माधुर्य का दिन है वो, लेकिन आज का दिन जो है वो औदार्य, मतलब भगवान के हृदय की जो अनंत उदारता है उसका दिन है आज। उदारता मतलब क्या होता है, उदारता कोई किसी की योग्यता को देखता नहीं, बिना किसी की योग्यता देते हुए जो भी देना है वो देते रहते हैं। कौन काला है, कौन गोरा है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बूढ़ा है, जवान है, अच्छी जाति का है, बुरे जाति का है, कुछ नहीं देखते वो। थोड़ा शांत से बोलोगे, टू मच नॉइज। इसलिए हम सबको थोड़ा आज के दिन का गौरव समझना बहुत जरूरी है, हा? तब जाकर हमको आज के दिन का पूरा लाभ मिलेगा। क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, तुमा बिना के दयालु जगत संसारे, ऐसा कोई अवतार आज तक नहीं हुआ है जो इतना दया जीव पर कर सकता है, इतनी अपार करुणा किस पर हो सकती है, कौन कर सकता है, ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। वो अवतार का आज आविर्भाव दिन है, इसलिए हम सबको बार बार विनती करते हैं कि इस अवतार के औदार्य का पूरा लाभ लेना है तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना होगा। भगवान भी कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त एकत्र होकर प्रेम से मुझे पुकारते हैं आना पड़ता है मुझे, वहां पर नहीं चाहते हुए भी आना पड़ता है, और चाहते क्यों नहीं, बिल्कुल आनंद होता है उनको आने के लिए। हमारे बीच में भगवान को खींचने के लिए इससे आसान और इससे श्रेष्ठ और कोई तरीका नहीं है। चाहे हम गटर के बाजू में खड़े हों या महल में खड़े हों, गरीब गांव में खड़े हो या धनवान शरीर में खड़े हो, शहर में खड़े हो, किसी भी जगह पर अच्छे बुरे लोगों के बीच में खड़े हो, अगर भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान को आना पड़ता है वहां पर। वो इतना योगियों के हृदय में रहना पसंद नहीं करते हैं और वैकुंठ में रहना भी इतना पसंद नहीं करते जितना भक्तों के बीच में, जब उनको पुकार रहे हैं उनके पास में आने के लिए तरसते रहते हो। हमको पुकारना चाहिए, पुकारने में शर्म नहीं करना चाहिए, वो पुकारने के लिए जीवन दिया ही है। अगर इस जीवन में कोई सद्गुण नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ प्रकार का जो ऐसे सराहना की जाए ऐसा कोई गुण ही है नहीं, तो ऐसे पतित अवस्था में भगवान का नाम पुकारना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवस्था में भगवान का नाम पुकारेंगे, जितना पतित रहेंगे उतना भगवान का ध्यान अधिक आकर्षित होता है। जैसे हमारे घर में कैसे होता है, चार बच्चे हैं, तीन बहुत अच्छे हैं, एक दिमाग से कमजोर है, बहुत अपाहिज है, तो क्या होता है, हरे कृष्ण, हम पर अटैक कर रहे हैं पीछे से। अरे थोड़ा संभाल के डीडी वर्षी पीपल, मैं बैठा हूं यहां पर। हा? तो क्या कह रहा था मैं कि घर में जब भी एक बालक अपाइज और कमजोर होता है तो सब बड़े बालक और माता पिता मिलकर ज्यादा ध्यान उसको देते हैं, ज्यादा सुविधा, ज्यादा प्रेम, ज्यादा अटेंशन सब उसको देते हैं, है ना। वैसे भगवान भी कलयुग के जीव पर सबसे अधिक अटेंशन देते हैं, तो वो अटेंशन का जैसे अपाइज बालक को लाभ लेना चाहिए वैसे हमको भी लेना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। अहम करने में बुद्धिमानी नहीं है, नम्र बनने में बुद्धिमानी है, क्योंकि नम्र बनने से भगवान की कृपा बहुत जल्दी और बहुत बड़ी मात्रा में हम पर प्रभाव करती है। तो आज के दिन सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा के दिव्य घर में नीम के पेड़ के नीचे भगवान का अवतार हुआ। भगवान का अवतार जो हमारे जैसे नहीं होता है, हमारा जन्म अलग तरीके से होता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने सच्ची माता के गर्भ में जगन्नाथ मिश्रा के हृदय से सच्ची माता के हृदय में फिर उनके गर्भ में प्रवेश किया, हमारे जैसा प्रवेश नहीं किया किसी के गर्भ में। फिर गर्भ में से आम मार्ग से प्रकट नहीं हुए, हो सीधे प्रकट हो गए नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम सखियों ने आजू बाजू के निमाई रखा। लेकिन अद्वैत आचार्य की जो पत्नी है सीता देवी, उन्होंने देखा कि साक्षात कृष्ण के जैसे है ये, लेकिन रंग गौर है, रंग स्वर्ण रंग का है, इसलिए अद्वैत आचार्य की पत्नी ने उनका नाम रखा गौर हरि। श्री गौर हरि भगवान की, तो गौर हरि जो कृष्ण के स्वयं कृष्ण है, हरि है लेकिन गौर वर्ण के, इसलिए उनका नाम गौर हरि रखा। और बचपन से ही जब उनका जन्म होने का समय था तो जो हमारे विचार से हमारी बुद्धि से सबसे अशुभ काल है, इस काल में हमने जन्म लिया। अभी हमारे घर में अगर कोई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के जन्म लेता है तो बोलेंगे बहुत अभद्र बालक है। क्या समय लिया जन्म के लिए, इतने ग्रहण के समय अमावस्या के दिन पता नहीं क्यों कहां से काला कुरूटा बालक आया सबको नरक पे भेजने के लिए। लेकिन भगवान का जो अवतार है वो दिव्य है। भगवान का ही चंद्र है, भगवान का ही सूर्य है, उन्होंने दिया हुआ ग्रहण है और वो किसी भी अपवित्र घड़ी को सबसे पवित्र बना सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। तो भगवान कैसे है वो, अगर वो अपवित्र घड़ी को पवित्र नहीं बना सकते हैं तो वो भगवान हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने चुना चंद्र ग्रहण का समय, उस समय सारे लोग जो पापी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, यवन है, म्लेच्छ है, सभी लोग जो है नदी में उदय हुए थे। जो भक्त थे, जो भाविक थे, क्या कहते हैं उसको, भावना वाले श्रद्धालु लोग थे, वो अपने आप को गले तक गंगा जी में डुबाए रखे थे और वो हरी 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 कृष्ण कृष्ण का नाम दे रहे थे। और जो धर्म का द्वेष करते हैं उनका भी द्वेष करते थे, उनको चिढ़ाने के लिए वो भी हरी 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 बोल रहे थे, कोई बचा नहीं, मतलब है ना। श्रद्धालु और अश्रद्धालु सभी मिलकर गंगा नदी में आकर हरी हरी का उच्चारण हो रहा था। पूरा विश्व जो है चंद्र ग्रहण के कारण हरी हरी का उच्चारण कर रहा, बोलिए हरी 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 हरी। पूरा आसमंत जो है वो भगवान के नाम के गुंजारों से पावन हो रहा था। ऐसे समय पर मून राइज, हम सब लोग आज चंद्र उगम कब होगा, चंद्र उदय कब होगा, इसका वेट कर रहे थे। कब हमें पानी की बूंद मिलेगी। तो चंद्र उदय के समय ये मायापुर चंद्र, नवद्वीप चंद्र का भी उदय हुआ सब जीवों का, सब कलयुग का उद्धार करने के लिए। कितनी बड़ी कृपा है। आपको शायद ये गणित पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत अद्भुत गणित है। बार बार अनंत बार बताने में आनंद आता है इसको, गणित को। 43,20,000 इसको अगर आप 1,000 से गुणेंगे तो उतने साल में ब्रह्मा जी का 12 दिन 12 घंटे होते हैं, और उतना ही अगर आप गिनेंगे 43,20,000 गुणित 1,000 गुणित 2, मतलब कितना हो गया। कुछ ऐसे कहते हैं कि 860 कोटि, इतने साल के समय में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 24 घंटा होता है उसमें, उसमें केवल एक बार कृष्ण आते हैं, और उस कृष्ण के पीछे पीछे देखिए कलयुग में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। आप समझ सकते हैं कितना दुर्लभ अवतार है। इतने हजारों दिव्य योग बीतने के बाद भी कृष्ण भगवान अवतार नहीं लेते हैं और उसके पीछे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी नहीं आते। हमारा क्या भाग्य है, हम जिस समय पे जी रहे हैं वो कलयुग है जिसके पहले द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ था और इसी में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। हम उस महान दिव्य युग में से हैं, हमारा जन्म जो है वो उस महान दिव्य युग में से है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। और केवल 5000 मतलब 86 अरब साल के सामने 5000 साल कुछ भी नहीं होते। अरे अभी अभी तो भगवान ने जन्म लिया, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं, अभी अभी कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था द्वापर के अंत में। तो इस महान स्वर्ण युग में हमने जन्म लिया है। और स्वर्ण युग क्यों है, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य ने बताया था कि मेरे जन्म के 10000 साल तक का काल स्वर्ण युग जाना जाएगा और इस स्वर्ण युग में जो भी व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेगा वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इतनी भाग्य की बात है, हम अपने भाग्य का क्या गिनती करेंगे। हम लोग इस बार अगर हमने बोट मिस कर ली, बस मिस कर ली, तो हम जैसा दुर्भाग्य और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तो आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है, ना पानी मिलेगा ऐसे कहा गया है। आज से केवल 70 साल के बाद में सबके किडनी में और मूत्राशय में मूत्र मार्ग में केवल मूत्र की पत्रियां भरी होंगी क्योंकि तो पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। ऑल किडनीज एंड यूरेटर्स फिल्ड विद स्टोन्स। दिन में एक ग्लास पानी आदमी पिएगा और आधे ग्लास में स्नान करने का प्रयास करेगा, मुंह धोएगा ही नहीं। पेड़ पर ऐसा मस्त आम का पेड़ रहेगा, आम ही नहीं रहेगा उसके अंदर, जमीन में से धान नहीं आएगा, आकाश में बादल होंगे वर्षा नहीं होगी, कुएं में सब ठनठनाहट मतलब नो वाटर। इतना भयंकर कल्पना कर सकते हैं आप, ये कैसे होगा। आज हम लोग नल छोड़ देते हैं और नल चालू रहता है, नल का धार चलते रहते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ गांव में अभी ऐसे हजारों गांव है महाराष्ट्र में और भारतवर्ष में जहां पर पानी के लिए दो दो मील चलना पड़ता है। समय दूर नहीं है, आपको झलक मिल रही है अभी भी, खाली दिमाग नहीं खुला हुआ, इतना ही फर्क पड़ रहा है बस। तो ये घोर कलयुग हुई उसकी झलक मिल रही है हमको। घोर कलयुग में क्या लिखा है, इंसान इंसान को खाएगा। आज भी ये हो रहा है, एबॉर्शन किए हुए बालकों को बेचकर मांस में मिक्स करके लोग खाते हैं और सबसे ज्यादा कीमत लगाते हैं उसकी, ये आज भी सत्य है। जानवरों को तो खाते हैं, गौ को भी खाते ही हैं, इंसान को भी खाते हैं। 42 साल के दूसरे महायुद्ध में जो साथी लोग सैनिक मर गए थे उनका मांस भी साथियों ने भूख की वजह से खाया था, ये सिद्ध किया हुआ सत्य है। तो सब घोर कलयुग के चिन्ह जो है आज भी उपस्थित है, हम लोग खाली उसको दुर्लक्ष कर रहे हैं। लेकिन हम पर ये घोर कलयुग हावी हो रहा है, धीरे धीरे क्यों न हो। तो इससे अगर बचना है पहले डरना सीखो। प्रभुपाद जी कहते थे माया से डरना सीखो, कलयुग के प्रभाव से भी डरना सीखो और आने वाले घोर कलयुग से बहुत डरना सीखो, नहीं तो फिर हम जानवर से भी गिर जाएंगे। जानवर तो भी अच्छे होते हैं, उनको निसर्ग का नियम कभी तोड़ते नहीं वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये स्वर्ण युग जो है चैतन्य महाप्रभु की वजह से, महाप्रभु जी ने वरदान दिया इसलिए स्वर्ण युग में हम लोग जी रहे हैं। और इतना आसान है कि केवल हमको थोड़ी बहुत श्रद्धा से, नित्यानंद प्रभु कहते हैं श्रद्धा मात्र मूल्य दान, थोड़ा श्रद्धा से हरि नाम को लेना है। एक बार आपने नाम लिया भगवान का, चैतन्य महाप्रभु आपको भूलेंगे नहीं कभी। आप शायद एक बार नाम लेके भूल जाएंगे फिर माया में फंस जाएंगे, लेकिन महाप्रभु चैतन्य कभी भी किसी ने भी एक बार प्रामाणिक हृदय से लिया हुआ नाम कभी भूलते नहीं है। इतने दयालु भगवान है। हम कैसे हैं, 50000 हमारे लिए कोई अच्छे काम किसने किए होंगे हम याद नहीं रखते हैं, एक किसी ने बुरा काम किया होगा जिंदगी भी याद रखते हैं, हम इतना उल्टे हैं भगवान के। अब भगवान के खिलाफ और लोगों के खिलाफ हमने हजारों अपराध किए होंगे भगवान याद नहीं रखते हैं, एक बार नाम लिया उनका प्रेम से तो याद रखते हैं। हमारे लिए पूरा फेवर है उनका, पूरी अनुकूलता है, लेकिन लेने में हम लोग कंजूसी करते हैं। आज का दिन जो है ना वो हमारे बुद्धि को जगाने का दिन है कि हम समझ जाए कि हम पर क्या कृपा हुई है। अभी हम लोग मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, ये भी जो पालघर की जगह है ना ये केवल कृपा स्थान है, यहां पर गौर नेता स्वयं आए हैं सेवा देने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि सारे देश विदेश में सब जगह पर गौर निताय की मूर्ति स्थापन करनी चाहिए, क्योंकि केवल इनके होने से सबके पाप अपने आप माफ होते जाएंगे। ऐसा फॉर्मूला है वो। गुड्डा गुड़िया बना के दे दो गौर निताय की बच्चों को खेलने के लिए, वो उनसे आसक्त हो जाएंगे और उनके दर्शन से ही पाप से मुक्त होते रहेंगे और प्रेम को प्राप्त करते रहेंगे। हा? बाकी सारे अवतार जो क्या करते हैं, पाप से मुक्ति दिलाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार पाप के मुक्ति के साथ में प्रेम को भी देता है। बहुत समझने वाली बात है। बाकी कोई भी अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, वामन अवतार, कोई भी अवतार हो, प्रेम का दान बहुत देते नहीं आसानी से। स्वयं कृष्ण भी क्या कहते हैं, सर्व धर्मम परित्याज्यम, सब धर्म को आप त्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं आपको प्रेम दूंगा, ऐसे नहीं बोलते। मोक्ष इच्छामि, आपको मोक्ष दूंगा। मोक्ष और प्रेम में बहुत अंतर है, बहुत बड़ी चीज है प्रेम। मोक्ष तो क्या कहते हैं ना उसको, 0-0 है खाली, बस पाप और पुण्य शून्य कर दिया, बस लेवल पे लाके रखा। आगे जाकर प्रेम प्राप्ति करनी है। चैतन्य महाप्रभु एक साथ ही पाप मुक्ति और प्रेम दान दे देते हैं, और नित्यानंद प्रभु जो उनके साथी है वो उनसे बढ़कर है। वो मार खाए प्रेम दे, अपराध ग्रहण करने के बाद भी प्रेम देते हैं। और क्या चाहिए हमको बताओ आप, और क्या चाहते हैं आप? हमारे पाप की माफी भी करने को तैयार है, उनको प्रेम दान भी देने को तैयार है, दो लोग धाम में प्रवेश देने को तैयार है, खाली आप एक नाम लेंगे उनको याद रखने को तैयार है, सारे आपके अपराध और पाप भूल जाने को तैयार है, और क्या चाहते क्या है हम? और किसका देर इंतजार कर रहे हैं हम लोग? तो जगने का समय है आज का। फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का अवतार दिवस जो है, बुद्धि को जगाने का समय है। इस दिन जिस तरह से उन्होंने सब लोगों को ट्रिक करके भगवान का नाम लेने में लगाया, उससे हम समझ सकते हैं कि उनका अवतार का पूरा उद्देश्य क्या था। एक झलक दिखाया उन्होंने, इतने से बालक के रूप में उन्होंने पूरे विश्व को हरि नाम में लगाया, और आगे भी जितनी बार रोते थे सब सखियां आसपास की जो सची माता की सखियां थी, सब लोग आके हरि नाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर कदम पर हरिनाम लेने को सब लोग को उन्होंने मजबूर किया। हरिनाम लेते थे तो हंसते थे, फिर रोते थे, फिर सब लोग हरिनाम लेते थे, तो सब लड़कियों को बहाना ही हो गया, वो दिन रात हरिनाम कीर्तन ही करती थी, क्योंकि वो बालक को हंसते हुए देखना चाहती थी। इतनी बड़ी कृपा है, देखो आप, नवद्वीप धाम, गायापुर धाम जो है इस कृपा का सागर है, वहां से वो कृपा सागर जो है पूरे विश्व में बह रहा है। जो प्रेम कृष्ण ने गोपियों पर किया, ब्रजवासियों पर किया, जो प्रेम ब्रजवासियों ने कृष्ण पर किया, उसका खान जो है वो मायापुर धाम है। उसको हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में रूपांतरित करके सबको बांट दिया महाप्रभु ने। वो जो आनंद था वो केवल गिने चुने गोपियों को रास में उन्होंने अनुभव दिलाया, केवल गोपियों को प्रवेश था, ना शंकर जी को था, ना लक्ष्मी जी को था, ना और किसी को था, मतलब एकदम प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल, अंतरंग और गुह्य, ऐसा आनंद जो है उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में पूरे विश्व को उपलब्ध कराया। हमने कोई कहेगा कि ऐसा एक मॉल है उधर बॉम्बे में कोने में, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जिनका इनकम 10 करोड़ महीने का ज्यादा है वही अंदर जा सकते हैं। अरे यार कितना बड़ा मॉल है, कौन जा सकता है उधर? जो जा रहे हैं उनका आप वंदना करेंगे, इतने महान लोग हैं आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और एक महीना ऐसा आता है अंदर का सारा माल जो है सब बनिया के दुकान में भी अवेलेबल हो जाता है, वही माल है वो, ऐसा नहीं घटिया नहीं है, वही माल एक महीने के अंदर, एक श्रद्धाल में एक महीना ऐसा होता है जो सब दुकान में वो ऐसा अवेलेबल रहता है, एकदम सस्ते दाम में, कहीं कहीं फ्री में मिलता है। तो क्या कहेंगे आप, अरे ये तो बड़ी कृपा है, वही महाप्रभु चैतन्य ने किया। जो केवल कृष्ण अवतार में केवल गिने चुने गोपियों को ही अवेलेबल था, वही चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में दूसरे अवतार में आकर पूरे विश्व को सभी लोगों को बांट दिया उन्होंने। हम लोग शायद इसकी कीमत समझते नहीं है, क्योंकि हम जानते नहीं कि वो आनंद क्या था जिसके लिए लक्ष्मी तड़पती थी, शंकर भगवान तड़पते थे, नारद मुनि, सुखदेव, सनत कुमार सब लोग तड़पते हैं उसकी झांकी प्राप्त करने के लिए। आकाश में सारे देवता लोग अपने वाहनों में मंडराते हैं दर्शन करने के लिए, क्या हो क्या रहा है, बंसीवट के पास में। सभी देवी देवता व्याकुल रहते हैं उसके लिए, केवल झलक प्राप्त करने के लिए। अनुभव तो दूर रहा, देखने के लिए, क्या कर क्या रहे, क्या प्राप्त कर रहे, उसको देखने के लिए दूसरे तरफ रहते हैं, फिर भी उनको प्रवेश नहीं मिलता वहां पर। वो आनंद जो देवताओं को मुमकिन नहीं है, वो कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने उपलब्ध कराया है। समझो आप इस बात को। सारे देवी देवता जो है, करोड़ों देवी देवता जो है, लाइन लगा के खड़े हैं कलयुग में भगवान का नाम लेने वाले परिवार में जन्म लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं वो हमसे बहुत बुद्धिमान है। हम यहां जन्म लेके भी इतने बुद्धिमान नहीं है, हम मूर्ख लोग हैं, लेकिन हमारा भाग्य जो है वो देवता लोग जानते हैं, क्योंकि उनका लाखों लोगों सालों का उनका जीवन होता है। वो सोचते हैं कि लाखों साल का जीवन प्राप्त करके फायदा क्या है, क्या मिलेगा अंत में, चिड़े पुण्य मर्तलों के विशंति, नीचे आना पड़ेगा पुण्य खत्म होने के बाद। लेकिन कलयुग के 50-60-70 ऐसी साल के जीवन के परिवार में अगर हम लोग जन्म लेंगे तो कुछ साल के अंदर भगवान का नाम लेके गौलोक धाम जा सकते हैं। पाप पुण्य का हिसाब करने की जरूरत क्या है, चिड़े पुण्य मर्तलों के विशंति इस श्लोक का विचार करने की जरूरत नहीं है। सीधे हरिनाम संकीर्तन करने वाले परिवार के अंदर जन्म लो, हरिनाम का सहारा लो और जाओ, वापस 14 भुवन में घूमने की जरूरत ही नहीं। ये कलयुग का भाग्य है, इसलिए अस्ति एको महान गुणा कलेर दोषे निंदर राजन, इतने महान दोषों के सागर के अंदर एक ऐसा गुण है जो तो सब जीवों को तार सकता है। ऐसे है भगवान का कृपा। और ये हफ्ता, ये मौसम पालघर के इस्कॉन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है। ऐसी ऐसी घटनाएं, कृपा की घटनाएं, हाँ कोई अद्भुत ऐसे भयंकर घटना नहीं घटी। क्योंकि जब वर्षा होती है ना तो वो कीचड़ पे भी गिरती है, गंदगी पर गिरती है, खेत में भी गिरती है, आदमियों पर गिरती है, सब जगह गिरती है। वर्षा होते कोई भेदभाव नहीं करती वो, तो भगवान की इच्छा हुई यहां पर एक वर्षा की जाए। हाँ, अभी तक आपने 20 साल तक गौर निताई का सेवा किया, गौर निताई की कृपा क्या है, गौर निताई की कृपा के बिना राधा कृष्ण के प्रेम का रहस्य हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसे भी लिखा गया कि जो गौर निताई की भजन नहीं कर सकता है वो अपने आप को राधा कृष्ण का भक्त नहीं बोल सकता है। इट इज अपराध टू कंसिडर वन सेल्फ अ डिवोटी ऑफ राधा एंड कृष्ण। अगर वो राधा और कृष्ण का अपने आप को भक्त समझते हैं लेकिन गौर निताई को नहीं मानते हैं, वो राधा कृष्ण के भक्त नहीं माने जाते हैं। इसलिए भगवान ने आपको यहां पर गौर निताई के रूप में पहले कृपा किया, आपसे सेवा लिया। क्यों से सेवा लिया, क्योंकि राधा कृष्ण के रूप में आकर आपकी सेवा ले, इसलिए आपको तैयार करने के लिए। तो अचानक ऐसी घटनाओं का चक्र चला कि रविवार से गुरुवार तक श्री राधा कृष्ण यहां पर उपस्थित होंगे। आपने दर्शन किया ना उनका आज, आपने सोचा होगा अरे प्रभु इधर क्यों नहीं आए, वो उधर ही कैसे रहे, उनका क्यों नहीं अभिषेक हुआ। हर चीज के कारण होते हैं, वो समझाने के लिए मैं बैठा हूं यहां पर। कारण यह है कि गौर निताई की जो पूजा होती है उसमें अनंत अपराध माफ किए जाते हैं। गौर निताई कभी ज्यादा अपराध को मन में लेते नहीं, इसलिए अवतारी धाम मायापुर का कहा है। मायापुर में कोई अपराध अपराध वैष्णव अपराध मानते हैं उसका परिणाम होता है, लेकिन बाकी सारे अपराध जो होते हैं ना आमतौर पे वृंदावन धाम में बहुत सख्त उसका दंड मिलता है, वो मायापुर में माफ है सब। तो वैसे ही गौर निताई के पूजा विधि में जो भी गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां दोष होते हैं वो माफ किए जाते हैं। लेकिन राधा कृष्ण के भजन में पूजन में बहुत ज्यादा विधि है और उसके अंदर माफी नहीं होती है, तो तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है और ये उम्मीद है, अपेक्षा है आप लोगों से कि आप लोग सब लोग मिलकर राधा कृष्ण के भगवान के पूजा के लिए सब लोग तैयारी करना चाहिए कि हम उसके योग्य बने, ये हमारी जिम्मेदारी है। केवल हमको राधा कृष्ण भगवान यहां पर चाहिए ऐसे इच्छा करने से काम पूरा नहीं होता है ना, हमको अपने आप को उसके लिए योग्य बनाना पड़ेगा। और योग्य कैसे बनेंगे, आप में से ही तो बनेंगे ना, इनमें से ही पालघर विभाग में से तो हरे कृष्ण वहां आंदोलन में भक्त बने हुए हैं। हम भी इस दुनिया में से भक्त बने, हम थोड़ी वैकुंठ से ऊपर गिरेंगे या स्वर्ग से टपके ऊपर, ऐसे नहीं। इधर से इधर के कीचड़ में ही थे, वहां से आ गए ऊपर थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर। वैसे ही पालघर में आम जनता से भक्त बने, तो आम जनता से भक्त बने उनमें से अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बनना है, ब्राह्मण की विधियों को समझाएंगे यहाँ के भक्त लोग आपको, ऐसे ब्राह्मण बनना है श्रेष्ठ तरीके का। शास्त्र का अध्ययन करना है, शरीर मन की शुद्धि रखनी है, हाँ इंद्रियों को दमन करना है, बहुत सारे नियम, माफी क्षमा, लोगों को मन में कोई गुस्सा रखना नहीं, माफ कर देना है क्षमा के रूप में, ऐसे कई गुण है भगवान ने गीता में वर्णन किए उसके, उसके आधार पर अपने हृदय के अंदर आत्मा के अंदर ब्राह्मणत्व का जो गुण है उसको पनाह देनी है, उसको बढ़ाना है, परवरिश देनी है उसको। तब जाकर एक दिन, बहुत दूर नहीं वो दिन, बहुत पास है, लेकिन वो एग्जाम के दिन है आपके, परीक्षा के दिन है, उतने दिनों में आप सब लोगों को अपने आप की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह से कृपा करके राधा कृष्ण यहाँ पर अवतरित हुए हैं उसी तरह से आपके सेवा के ऑल्टर में भी वो प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो आए हैं, आपके सिग्नल दिया उन्होंने कि हम आना चाहते हैं आपके बीच में, इसलिए आ गए हैं, वो सिग्नल दिया उन्होंने आपको, लेकिन अभी सेवा में उनको प्रकट करने के लिए सेवा के माध्यम से आपको तैयारी करना पड़ेगा। और ये भी आपको बल भगवान देंगे, क्योंकि हर एक जीव के अंदर का जो बल है वो भगवान ही है, भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए आप लोगों को हृदय से इच्छा करनी चाहिए, भगवान हम चाहते हैं कि आपकी हम सेवा करें, उसके योग्य बने, उसके अनुरूप अनुकूल बने। तो यहाँ के जो भक्त हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, वो सब लोग मीटिंग करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, आप सबको बड़े उत्साह से इसको अपने हाथ में लेना है, नहीं तो जैसे आए वैसे लौट भी जा सकते हैं, याद रखना, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, जैसे आए वैसे चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो चले जाएं, हम चाहते हैं कि यहां पर केवल वन वे हो, अंदर आए हैं अंदर रहना है, यहां पर एग्जिट नहीं हो। तो इसलिए आपको स्फूर्ति देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए उनको रखा है, दर्शन देने के लिए, वो दर्शन देके आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी सेवा में माना चाहते हैं, आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए, लेकिन थोड़ा समय बाकी है उसके पीछे, इसलिए छोटे राधा कृष्ण के विग्रह आपके सामने आज विराजमान है, इनका अभिषेक किया गया, गौर निताय का भी अभिषेक किया गया, दोनों की सेवा का स्टैंडर्ड जो है वो हम बढ़ाना चाहते हैं, उनकी भोग बढ़ाना चाहते हैं, उनकी श्रृंगार सेवा बढ़ाना चाहते हैं, उनकी आरती बढ़ाना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा कि भक्ति का भाव बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नंबर पकौड़े के नंबर बढ़ा दिए, सब्जी के बढ़ा दिए, भक्ति को बढ़ाना साथ में है, प्रेम भक्ति के साथ में उसको करना है, क्योंकि वो रिश्ते कैसे हैं, हमारे प्रेम भक्ति के भाव से, कितने छप्पन भोग देने से रिश्ते, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वो था ना दुर्योधन, उसके बाद में छप्पन भोग थे, छोड़ के गए और उसके आगे क्रॉस करके गए और झोपड़ी में चले गए और केले का छिलका खाया उन्होंने, ऐसे प्रेम पुजारी हमारे भगवान है ना वो, तो वो थोड़ी अपने बाहर के जो आडंबर है उससे प्रभावित होंगे, भक्ति भाव से अगर आप चार आइटम, पांच आइटम, छह आइटम लगाएंगे, बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे वो। तो प्रेम भक्ति और बाहरी जो ढांचा है दोनों का वर्धन करने के लिए हम आप सबको अनुरोध कर रहे हैं, बाहरी जो ढांचा है उसको भी वृद्धि करनी चाहिए और हृदय का भाव है उसकी भी वृद्धि होनी चाहिए, तब जाकर सांवले रंग के कृष्ण और गोरी रंग की राधा रानी दोनों यहां प्रकट हो जाएंगे। हम आपको हृदय से शुभकामना देना चाहते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्दी जल्द इस विभाग में राधा कृष्ण के विग्रहों का स्थापना हो और उनकी सेवा में आप सब लोग रुजू हो जाएं। तो एक लीला बताएंगे, 10 मिनट बाकी है, कि जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित निमाई भगवान का जब अवतार हुआ तो मुझे जैसे आपने बताया कि रोते थे तो दिन भर गोपियां सखियां जो हैं हरिनाम संकीर्तन किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत भयंकर सांप आया, इतना भयंकर सांप आया कि उसको देखकर सब लोग डर गए, लेकिन उसके आगे वो और डर गए, क्योंकि वो सांप ने क्या किया, निमाई को अपनी लपेट में लिया पूरा, तो लोग इतने डर गए, इतने डर गए कि अभी अगर सांप को कुछ करेंगे तो निमाई को डर सकता है वो, और नहीं करेंगे तो भी डर है कि क्या करेगा निमाई को, तो सब लोग है ना तड़प रहे थे हृदय में अपने, एकदम ऐसे कुछ भी क्या करो और क्या ना करो ऐसे भावना में एकदम तड़प कांप रहे थे भय से। और उतने में उस सांप ने गोल बनाया अपने शरीर का और उसमें निमाई जाके लेट गई आराम के साथ। मुझे हमेशा इसका बड़ा आश्चर्य होता है कि सब भक्त इतने चिंता में हैं, रो रहे हैं, कांप रहे हैं, तड़प रहे हैं, दिल धड़कन उनकी बढ़ रही है और भगवान आनंद में बैठे हुए है ना। शकटासुर को भगवान ने जब मारा तो सब ब्रजवासी परेशान थे, और भगवान ने कहा ऐसा एक पांव हिलाया और आराम से बैठे थे। सब भाग रहे, क्या हो गया क्या हो गया, वो उतना बड़ा गाड़ी गिर गया, सब बर्तन गिर गए, बालक कुछ कुछ हुआ तो नहीं है, बालक अपने हंस रहे आराम से। सब तड़प रहे हैं, भगवान ने छलांग मारा जमुना के अंदर और खून ऊपर आ रहा है जमुना जल में, यशोदा जी बेहोश हो रही है, नंद महाराज कांप रहे हैं, सारे आदि गोपियां बेहोश पड़ी हुई है, गोपाल वैसे तड़प रहे हैं, और भगवान नाच रहे हैं उसके बाद में आराम से, और नाच रहे इतने कोमल है उनके चरण कमल, इसको सोचकर भी गोपियां रोती थी, वो चरण कमल कालिया के मुंह से ऐसा भयंकर अग्नि और विष को बाहर निकल रहे हैं। कालिया को तो मृत्यु की वेदना हो रही है, और भगवान जो है इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं कि देवता गंधर्व यक्ष किन्नर किम पुरुष उनके ताल को पकड़ नहीं पा रहे कोशिश कर रहे हैं को साथ देने का, साथ को और ताल को पकड़ नहीं पा रहे, वो कौन से सुर में कौन से ताल में नृत्य कर रहे हैं पकड़ नहीं पा रहे, आनंद ले रहे हैं भगवान। और सब ब्रजवासी चिंतित हैं, परेशान हैं, इसको मैं समझ नहीं सकता हूं कैसे कैसे भगवान चिरंतन आनंद ले रहे हैं, और भक्त जो है उनके लिए चिंता में है, वो चिंता ही जो योग माया का प्रभाव है, वो चिंता ही उनके लिए आगे बढ़ने का शुद्धिकरण का भक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। तो सब सखियां जो है परे वो पड़ोसन की सब सखियां परेशान है, सब लोग करे कि अब इतना भयंकर सांप के ऊपर ये बालक जाके लेट गया है। लेकिन रहस्य की बात क्या है, वो तो शेष नाग थे, कोई विषैले नाग नहीं थे, वो उनको नचने के लिए नहीं आए थे, वो तो वैकुंठ में जो अनंत शेष है, नित्यानंद प्रभु का अवतार बलराम जी का जो अवतार है, वो सोचते हैं कि अरे मेरे ठाकुर जी पृथ्वी पर चले गए कलयुग में, मैं यहाँ पर क्यों रुकूं, चलो मैं भी जाता हूँ सेवा करने के लिए। तो वो थे वो अनंत शेष जो अपने स्वामी को कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो आराम देने के लिए आए थे, और तो भगवान भी उनको पहचानते हैं, वो भी आराम लिया उन्होंने बस क्लास एकदम। कुछ देर बाद में वो सांप जो गोल गोल थे वो सीधे हो गए और भागने लगे, बोले अरे अच्छा हो गया सांप चला गया। लेकिन और एक चिंता की घटना हुई, जैसे सांप जाने लगा बालक पीछे भागने लगा उसके पकड़ने के लिए सांप को उतने में वो सब सखियों ने झपक के उनको पकड़ा और सांप को जाने दिया, बच्चे को तुरंत पकड़ के घर पे ले गए। क्यों करते हैं ऐसे भगवान, हमेशा अपने भक्तों को चिंता में क्यों डालते हैं, क्योंकि भगवान के विषय में चिंतित होने से आध्यात्मिक प्रगति होती है। हम लोग चिंता करते हैं अपने लिए, अरे कैसा होगा बच्चे को एसएससी में मार्क्स कितना मिलेगा, परीक्षा चालू हो गई है, क्या उनको गौर पूर्णिमा प्रोग्राम में लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं क्या होगा कल के पेपर में, हाँ इतनी चिंताएं होती है, उस चिंता से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। फिर भगवान के विषय में जब चिंता करते हैं तो बहुत दिव्य प्रगति होती है भगवान भक्ति में। सब ब्रजवासियों का जीवन इसी से भरा हुआ है, सब नवद्वीप वासियों का जीवन इसी से भरा हुआ है, भगवान के लिए निरंतर चिंता करते रहना, कभी रोते हैं कभी बेहोश हो जाते हैं, इतनी चिंता करते हैं, लेकिन ये चिंता हर पल हर क्षण हर मोमेंट उनको भक्ति में मीलों मील आगे बढ़ा देती है। उसी तरह से एक बार दो आदमी आए, वो देखा अरे इतना अच्छा बालक, इतना सुंदर सोने का और चांदी का और हीरों का और रत्नों का गहने पहना हुआ बालक है, एक बार लूट लेते हैं उसको, दोबारा चोरी करने का समय नहीं आएगा एक ही बार लूट लेंगे और फिर चोरी करने से वीआरएस ले लेंगे। तो लेके उनको उठाते, बोलते बालक को मार डालेंगे और सब गहना उठा लेंगे उसका। अभी भी सब लोग चिंतित है, कहा गया निमाई कहा गया, और निमाई को सर पे बिठाकर वो चल सोचते हैं कि चले अपने घर पे चले जाएंगे, एकांत में जाके उसके सब उसको मार कर उसके गहने लेंगे। लेकिन भगवान का भूल भलैया कैसा है गोल 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 घूमकर पूरा मार्केट में घुमा लेते हैं उनको, सोच रहे घर की ओर जा रहे हैं लेकिन मार्केट में गोल गोल घूमते हैं, वो सोच रहे कि स्ट्रेट जा रहे हैं लेकिन घूम रहे गोल गोल, और पूरा घूम के पूरा वापस जगन्नाथ मिश्रा के घर के दरवाजे में आते हैं, और देखते अरे जहां से गए थे वहीं पहुंच गए, क्या करें, भागे आगे रखे आगे क्या करें, क्या कंफ्यूजन के अंदर बीच में क्या करते हैं, बालक को बहलाने के लिए स्वीट मीट खिलाते, संदेश खिलाते, उसको सेवा करते बालक की, बहुत बालक को आनंद आता है, कंधे पर बैठ कर पूरी शहर की सैर करके आता है, खुद आनंद ले रहे हैं बहुत, और सब घर में चिंतित है कहां गया। और लौट के आते हैं तो चोर एकदम भ्रमित हो जाते हैं, कहां आ गए अभी क्या करें, भागे तुरंत भाग जाते हैं एकदम जोरदार। लेकिन भगवान कैसे हमारे इतने दयालु हैं, वो ये सोचते नहीं है कि मुझे मारकर मेरे गहने चुराने के लिए आए थे, ये नहीं सोचते हूँ, मुझे शहर भर का सैर कराया और संदेश भी खिलाया, आनंद दिया बहुत। कहते मैया बाबा वो लोगों ने मुझे, मैं तो रस्ते में खो गया था ना, खेलते खेलते घर नहीं मिल रहा था, उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठा के गांव की सैर करा के मिठाई खिलाते खिलाते यहाँ पर लाया, उनको अच्छा बख्शिश दो। तो मैया बाबा बाहर भागवा के आते बख्शिश देने के लिए, कहाँ पर रहे हो, गायब हो गए, कहाँ गए होंगे, इतने अच्छे संत लोग कहाँ गए होंगे। तो ये विरोधाभास है, हाँ, एक तरफ चोरी, एक तरफ सीना, एक तरफ मतलब पाप और चोरी का भाव प्रकट हो रहा है, एक तरफ दया और करुणा का भाव प्रकट हो रहा है, एक तरफ चिंता प्रकट हो रही है, एक तरफ आनंद आराम प्रकट हो रहा है। ये भगवान की लीला का विशेषता है, ये सब योग माया का कारण है, प्रभाव है सब। ऐसे अनंत लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की। एक बात समझना, जैसा हमको सबको समझना चाहिए कि महाप्रभु जैसी लीला भगवान के किसी भी अवतार ने लेगी, कोई कृष्ण भगवान ने भी नहीं की। इनकी करुणा और इन्होंने जो उद्धार किया जिस प्रकार से, किसी भी अवतार ने नहीं किया है। छोटे से कुत्ते के पिल्ले, जंगल के शेर, हाथी जानवर, हिरन, पक्षी, पेड़ तक भी, अरे पेड़ तक ने भी झुककर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया है। और पेड़ भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखकर कांपते थे, ऐसे थर 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 कांपते थे, उनके पेड़ों से पत्तों से मधु निकलता था आनंद में, इतना आनंद दिया उन्होंने, ऐसे कोई भी अवतार ने आनंद नहीं दिया। यानी कि सबसे जड़ जो जीव है पेड़, वहां से लेकर सबसे चेतन जो जीव है देवता और मनुष्य, ये सब लोगों को भगवान ने दिव्य आनंद देकर उनका उद्धार किया है। तो ऐसा अद्भुत लीला और कृपा करुणा किसी भी अवतार ने नहीं किया, और उस अवतार का आज जन्मदिन है, कितने आनंद की बात है। श्री गौरांग महाप्रभु की, सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा की, क्योंकि वो ऐसे भाग्यवान जीव है जिनके आंगन में स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद निमाई उन्होंने अवतार लिया, उनके आंगन में उन्होंने सुशोभित किया उस आंगन को, अनंत आनंद दिया नवद्वीपवासियों को, ऐसा लीला किया कि उनके अवतार में भाग लेने के लिए सभी अवतारों के भक्त आए। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, जो अवतार होता है उसी के भक्त लोग उसमें साथ में जन्म लेते हैं और लीला करते हैं। नरसिंह भगवान के समय प्रहलाद जी आए थे, और जब भी मत्स्य अवतार में भगवान आए तो समुद्र कन्याएं सब, जो समुद्र में जो जीव सृष्टि है वो सब भगवान से मोहित हो गई थी। कई बरा अवतार के है भक्त लोग हैं, और मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार के भक्त हैं, हम तो जानते नहीं क्योंकि हम लोग को वो भाव नहीं है कि कैसे वराह अवतार से प्रेम करें, लेकिन उनके भी वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार सबके भक्त मंडली अनंत भक्त मंडली है। रामचंद्र भगवान के हनुमान जी हैं और सारे बंदर हैं, ये सब लोग महाप्रभु चैतन्य के अवतार में आए हैं। थोड़ा बता दें आपको, प्रहलाद जी वासुदेव दत्त बनकर आए है ना, हनुमान जी मुरारी गुप्ता बनकर आए, सत्यभामा जगदानंद पंडित बनकर आए, सब गोपियां जो है रूप मंजरी और लबंग मंजरी और गुण मंजरी सब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बनकर आए। कितने सारे लोगों का वर्णन दिया है राधा कृष्ण गणदेश दीपिका में। अनंत अवतारों के जो भक्त है वो सब महाप्रभु चैतन्य की लीला में भागी होने के लिए आ गए सब लोग, क्योंकि जानते थे कि ऐसा अवतार और ऐसी करुणा किसी भी अवतार में नहीं। जिस अवतार का वो पूजन करते थे, जिनके वो भक्त हैं, वो भी सब छोड़कर आए महाप्रभु जी का प्रेम का और करुणा का अनुभव लेने के लिए, और सब लोगों ने हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। ये विशेष संबंध की बात है, सब अवतार के सब भक्तों ने मिलकर इस अवतार के साथ सहयोग देने के साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस केवल यही किया उन्होंने दिन रात। कुछ समय दिन में करते थे, बाद में बोला रात में सोना क्यों है, रात में भी करो। तो उसके बाद कहीं सोने का डिस्क्रिप्शन नहीं आता है कि अभी भक्त लोग सोने ही चले गए, थक गए दिन भर सेवा और कीर्तन करते करते और रात में विश्राम करने गए, ऐसा वर्णन कभी आया नहीं उसके बाद में, क्योंकि दिन रात कीर्तन करते थे। वो बोलेंगे क्या पढ़ना है इसको, यहाँ गए कीर्तन किया, वहां गए कीर्तन किया, इधर गए कीर्तन किया, उधर गए कीर्तन किया, यही वर्णन है उसका। लेकिन हर वर्णन में भी इतनी रुचि और इतना स्वाद है, क्योंकि वो कीर्तन ऐसा बोरिंग कीर्तन नहीं था जैसा हम लोग करते ना, अभी प्रसाद मिलेगा, कीर्तन 5 मिनट चल रहा है और 10 मिनट चलने वाला है, पता नहीं कब मिलेगा, ये भाव नहीं उनका। भूख प्यास भूलकर कीर्तन करते थे। नित्यानंद प्रभु ने एक बार कुछ सैकड़ों बच्चों को ऐसा देखा, खाली देखा उनको, वो बच्चे प्रेम से पागल हो गए और उन्होंने 3 महीना कीर्तन किया। कितना? 3 घंटा नहीं, 3 महीना 90 दिन 24 घंटा कीर्तन किया उन्होंने, खाना पीना सोना सब भूल कर। उनको पता नहीं चला, उनको लगा 10 घंटा भी नहीं कीर्तन किया, 5 मिनट में कीर्तन नहीं। हम लोग खाली पढ़ सकते हैं उसको, उसका अर्थ समझने के लिए बहुत मुश्किल है हमारे। 3 महीना कीर्तन किया बच्चों ने खाना पीना छोड़कर, ये केवल महाप्रभु की लीला में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इतना अद्भुत तो लीला है। ये हमारा सबका परम भाग्य है कि हम उसी स्वर्ण काल में आए हुए हैं। हमारे लिए इसमें क्या है समझना बहुत जरूरी है। लीला तो बड़ी भव्य और दिव्य है, लेकिन हम उसकी के प्रभाव में है और उसका लाभ हमको लेना चाहिए। ये हमारे लिए मैसेज है इसमें। तो आइए हम सब लोग मिलकर हरिनाम संकीर्तन में पूर्ण आश्रय ग्रहण करने का निश्चय कर लें, तब जाकर गौर पूर्णिमा सफल है, तब जाकर गौर पूर्णिमा धन्य है और हमारे जीवन में गौर पूर्णिमा का कुछ मतलब है। जब हम सब लोग मिलकर निश्चय कर लेंगे कि इसी जन्म में गौरांग महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ग्रहण करके उनके धाम में लौट के जाना है। श्री गौरांग महाप्रभु की। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।